चैप्टर 23 द दक्षिण नायक। साहित्य दर्पण कार के अनुसार अनेक नायिकाओं के साथ समान प्रेम करने वाले नायक को दक्षिण नायक कहते हैं। ईसुत्व अनेक महिला सम्रागो दक्षिण कथित। साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 142। किंतु दशरूपक कार के अनुसार ज्येष्ठा नायिका में हार्दिक प्रेम रखने वाले को दक्षिण नायक कहते हैं। यो अस्याम ज्येष्ठायाम हृदयेन स व्यवहरति स दक्षिण। दशरूपक तृतीय प्रकाश द्वितीय प्रकाश पृष्ठ संख्या 365। आचार्य शुक्ल ने रत्नसेन को नागमती और पद्मावती दोनों में समान रूप से अनुरक्त होने के कारण दक्षिण नायक कहा। ऐसा लगता है कि उनके सामने साहित्य दर्पणकार की परिभाषा रही। उदाहरण, नागमती और पद्मावती को झगड़ते सुनकर दक्षिण नायक राजा रत्नसेन दोनों को समझाता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 35। दंडक, ऐसे छंद जिसमें एक चरण में 26 से अधिक वर्ण हो दंडक कहलाते हैं। इसके सभी चरण समान होते हैं। यह सम छंदों के वर्ग में आता है। दंडकों के दो भेद हैं, साधारण और मुक्तक। साधारण दंडकों में वर्णों के लघु गुरु का क्रम नियत रहता है, पर मुक्तक दंडक इस बंधन से मुक्त होते हैं। मुक्तक दंडकों का ही प्रचलित नाम कवित्त है। उदाहरण, हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 339। दबा हुआ रूप विधान। जब किसी उक्ति में कोई अप्रस्तुत विधान दबा हुआ या गर्भित हो, अर्थात प्रकट न होने किंतु व्याख्या के क्रम से स्पष्ट हो, तो उसे दबा हुआ रूप विधान कहेंगे। उदाहरण, हीरा लेज सो विद्रुम धारा विहसत जगत को हुई उजियारा। हीरे की ज्योति लिए हुए जब वह विद्रुम वर्ण की दूति फैलती है, तब सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। इस उक्ति में उषा की मधुर श्वेत अरुण ज्योति के उदय का दृश्य किस प्रकार छिपा है। जब पद्मिनी हंसती है, तब संसार उसी प्रकार खिल उठता है, जगमगा उठता है, जिस प्रकार उषा का मधुर प्रकाश फैलने पर। उक्ति के भीतर अप्रस्तुत रूप में इस प्रकार दबा हुआ रूप विधान आधुनिक काव्याभिवंजन की दृष्टि से भी परम रमणीय माना जाता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 115। नोट, आचार्य शुक्ल ने काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक निबंध में इसे प्रच्छन्न अप्रस्तुत योजना कहा है और बताया है कि भारतीय अलंकार शास्त्र की दृष्टि से इसे व्यंग रूपक कहेंगे। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 223। दशम द्वार ब्रह्मरंध्र। उदाहरण, दशम द्वार ब्रह्मरंध्र है जिसके पास पहुंचने में बहुत से विघ्न या अंतराय पड़ते हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 62। दाम्पत्य रति। दंपति पति पत्नी के बीच जो रति भाव होता है उसे दाम्पत्य रति कहते हैं। उदाहरण, पवित्र दाम्पत्य रति की कैसी मनोहर व्यंजना उन्होंने सीता द्वारा उस समय कराई जिस समय ग्राम वनिताओं ने मार्ग में राम को दिखाकर उनसे पूछा था कि ये तुम्हारे कौन है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 59। दीप्ति सौंदर्य की उज्ज्वलता। वस्तुतः शोभा कांति दीप्ति और माधुर्य ये सभी यौवनावस्था में प्रविष्ट नायिकाओं के अयत्नज अलंकार हैं। ये सभी नायक में भी पाए जाते हैं। दीप्ति को समझने के लिए कांति और कांति को समझने के लिए शोभा की समझना आवश्यक है। रूप यौवन लालित्य भोगा दे रंग भूषणम शोभा प्रोक्ता, अर्थात रूप यौवन सौकुमार और सुख भोग के सम्भूत नायिका के शरीर का सौंदर्य शोभा है। शोभा में जब काय विलास की वृद्धि लक्षित होती है तब वह कांति हो जाती है। सैव कांतिर्मथा अप्यायित द्युति साहित्य दर्पण पृष्ठ संख्या 181। अति विस्तीर्ण हो जाने पर कांति ही दीप्ति हो जाती है। कांति रेवा विस्तीर्णा दीप्ति अभिधीयते साहित्य दर्पण पृष्ठ संख्या 181। उदाहरण, रूप सौंदर्य के अंतर्गत प्राय दीप्ति और माधुर्य दोनों मिले रहते हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 90। उदाहरण, रूप सौंदर्य के अंतर्गत प्राय दीप्ति और माधुर्य दोनों मिले रहते हैं। दीप्ति चकित और स्तंभित करती है। प्रेम काव्यों में कहीं कहीं नायिका के रूप को देखते ही नायक जो मूर्छित होकर गिर जाता है उसे दीप्ति का प्रभाव समझना चाहिए। रस विमांसा पृष्ठ संख्या 86। दुखवाद। यह दार्शनिक सिद्धांत जो संसार को दुखमय मानता है, बौद्ध दर्शन इस संसार को दुखमय मानता है, इन दुख के कारण का अनुसंधान करता है, उन्हें मुक्ति का उपाय बताता है, इसलिए उसे दुखवादी दर्शन कहते हैं। उदाहरण नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 681। उदाहरण शुद्ध आत्म पक्ष के विचार से दुखवाद स्वीकार करते हुए भी साधकों के लिए ज्ञान द्वारा उस दुख की निवृत्ति मानते हुए भी वे लोक कल्याण के पूरे प्रयासी थे। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 23। दुष्क्रमत्व एक प्रकार का अर्थदोष, जहाँ वस्तुओं के निबंधन क्रम में लोक परिपाटी का उल्लंघन हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण इस पद के भीतर मारुत को, मन को, खगराज को, इस वाक्यांश में कुछ दुष्क्रमत्व प्रतीत होता है। मन को सबसे पीछे होना चाहिए, मन का वेग जब कह चुके तब खगराज का वेग उसके सामने कहीं कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 66। दृश्य नाटकों में अंकों के अंतर्गत होने वाले स्थल परिवर्तनों को अंग्रेजी में सीन कहते हैं। इसी के लिए हिंदी नाटकों में दृश्य शब्द प्रयुक्त होता है। एक अंक के भीतर कई दृश्य हो सकते हैं। उदाहरण प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त और नाटकों में यह दृश्य शब्द अंग्रेजी का अनुवाद छोड़ दिया और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 549। दृश्य काव्य वह रसात्मक वाक्य रूप काव्य जो अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सके, उसका नाम रूपक है। इसे रूपक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रदर्शक नट इसमें चित्र चरित्रों के रूप में अपने में आरोप किए रहते हैं। उदाहरण हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रस की प्रधानता रखी है। इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 316। उदाहरण कहने की आवश्यकता नहीं कि दृश्य काव्य का स्वरूप भी घटना प्रधान ही होता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 73। साहित्य क्षेत्र के भीतर आने वाली रचनाओं के तीन रूप तो हमारे यहाँ पहले से मिलते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और कथात्मक गद्य काव्य। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 169। दृष्टांत जहाँ समान धर्म से युक्त उपमान और उपमेय रूप वाक्यार्थों में बिंब प्रतिबिंब भाव की झलक होती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि के साथ गुथे वर्णन में भी बहुत से है, पर उनमें वस्तुओं और व्यापारों का उल्लेख बहुत पूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 90। दृष्टि सृष्टिवाद इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न जीव अपनी स्वाभाविक अविद्या दृष्टि के कारण अपने लिए भिन्न भिन्न सृष्टियों की कल्पना कर लेते हैं। इन सृष्टियों में साम्य होता है, एकता नहीं होती, अतः जगत प्रपंच एक नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस सिद्धांत का उल्लेख मात्र किया है। उदाहरण जिनका उनका सूफियों का प्रतिबिंबवाद, वेदांत के विवर्तवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद आदि अनेक वादों में से एक प्रसिद्ध वाद है। सूरदास पृष्ठ संख्या 23। दैन्य 33 संचारी भावों में से एक दुर्गति अथवा परतिरस्कृति के कारण जो मन कैलव्य क्लैव्य होता है वही दैन्य है। मध्यकालीन भक्त कवियों ने अपने आराध्य की महत्ता के सामने अपनी सहज हीनता का अनुभव करते हुए दैन्य के उद्दात स्वरूप की व्यंजना की है। भक्त कवियों द्वारा दैन्य भाव की इतनी विशद व्यंजना हुई है कि इसे स्थायी भाव जैसा महत्व प्राप्त हो गया। वस्तुतः नवदा भक्ति के दास्य और आत्मनिवेदन इन दोनों भेदों में दैन्य का विशेष महत्व मान्य है। पंचरात्र आगमों में आत्मनिवेदन के स्थान पर शरणागति का पद का प्रयोग किया गया। शरणागति के 6 भेदों आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वास, गोपत्रिन्त्वे वर्णम, आत्मनिक्षेप कार्पण्य में अंतिम कार्पण्य में भी दैन्य की पराकाष्ठा होती है। तुलसीदास ने दास्य भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है, अतः उनके लिए दैन्य संचारी भाव न रहकर स्थायी मन प्रवृत्ति बन गया। उदाहरण दैन्य भाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामी जी में पहुंचा हुआ है, उस उत्कर्ष को और किसी भक्त कवि में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 70। द्वैतवाद यह दार्शनिक मत अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार न संसार मिथ्या है, न जीव ब्रह्म का आभास, ब्रह्म एकमात्र सत्य नहीं है। वस्तुतः पांच भेद नित्य हैं, ईश्वर का जीव से, ईश्वर का जड़ पदार्थ से, जीव का जड़ पदार्थ से, एक जीव का दूसरे जीव से तथा एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से भेद नित्य है। इस प्रकार इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म जीव और जगत परस्पर भिन्न है। इस मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य 1119 से 302 ईस्वी है। उदाहरण, जिस प्रकार हमारे यहाँ अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी और द्वैतवादी आदि सब श्रुतियों को ही आधार मानकर उन्हीं के वचनों में प्रमाण लाते हैं, उसी प्रकार वे कुरान के वचनों को अपने ढंग पर व्याख्या करते हैं। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 36। द्रव्य, जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 136 से 137। द्रव्य, द्रव्य द्रव्य गुण तथा कर्म के आश्रयभूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य ही किसी कार्य का उपादान कारण होता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये सभी द्रव्य हैं। आचार्य शुक्ल ने जगत के रूपों और व्यापारों को द्रव्य कहा है। क्रोची ने मानव मन पर अंकित बाह्य प्रकृति के रूप संस्कारों को द्रव्य कहा है। उदाहरण, दृश्य जगत के नाना रूप व्यापार है। द्रव्य, इसी द्रव्य के सहारे आत्मा की क्रिया मूर्त रूप में अपना प्रकाश करती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 17। उदाहरण, वह क्रोचे कहता है, द्रव्य वह भावात्मकता है जो कला के रूप में निरूपित न हुई हो। चिंतामणि भागवत पृष्ठ संख्या 188। द्रव्य यज्ञ, विनीत वचन स्तुति एवं उत्तम द्रव्यों की भेंट द्वारा किया गया पूजा विधान ही द्रव्य यज्ञ है। देवताओं के निमित्त द्रव्य त्याग के रूप में किए जाने वाले प्राचीन यज्ञ द्रव्य यज्ञ है। उदाहरण, मंत्र काल या वैदिक काल में सामान्य प्रवृत्ति इसी द्रव्य यज्ञ की थी। सूरदास पृष्ठ संख्या 4।